आगे देखिएगा, इसमें दर्द है इसका। बड़ा खूबसूरत रुकू है। आप इस शख्स के दर्द को महसूस करेंगे और आपको पता चलेगा कि दीन के काम करने की प्री रिक्विजिट यानी सबसे अहम बुनियादी शर्त क्या है। कौन करता है दीन का काम? जिसको बहुत अच्छा बोलना आता है, बेकार बात है। जो बहुत पढ़ा लिखा है, बेकार बात है। हाफिज़े कुरान है, बेकार। ग्रामर आती है, बेकार। तजवीद है, बेकार। इस काम को करने के लिए शर्त है, जो चीज़ फ्यूल का काम देती है वो क्या है? तड़प, खैर ख्वाही। और इस शख्स में कूट कूट कर भरी हुई थी। देखिए आयत 39 से 50, टॉपिक लिखिएगा, मैं तुमको बुलाता हूँ निजात की तरफ और तुम दावत देते हो मुझे आग की तरफ। ये दुनिया में आज भी हो रहा है। जो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं ना, जो दावत इल्लाह का काम करते हैं, वो असल में हमें निजात की तरफ बुलाते हैं। वो हमारे मुखलिस हैं। उन्होंने हमसे क्या लेना है? कुछ भी तो नहीं चाहिए। इसके बरक्स दुनिया में अक्सर लोग इस वक्त आग की तरफ बुलाते हैं, कभी किसी नाम से, किसी नाम से। अल्लाह मुझे आपको बचा के रखे। कहने लगा, وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ। اے میری قوم، یہ دنیا کی متاع فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی کے لیے ہے۔ جس نے گناہ کیا ہے اسے تو برابر برابر کا بدلہ ہے، اور جس نے نیکی کی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہاں وہ ہو ایماندار، تو وہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزی پائیں گے۔ کتنی گہری باتیں اس کی۔ اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں؟ آپ یہ درد بھرا جملہ بولا کریں اپنے بچوں کے آگے، کبھی اپنے شوہر کے آگے، کبھی بھائیوں اور بہنوں کے آگے۔ دیکھو، میں تو تمہاری نجات چاہتی ہوں، میں تمہیں بچانا چاہتی ہوں، اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔ یہ بھی جملہ یاد کر لیجئے۔ کب بولنا ہے؟ جب لوگ مجبور کریں گے آپ کو گناہ کے لیے، اور کہیں گے میری خوشی کی خاطر کر لو، میری خوشی کی خاطر آ جاؤ، میری خوشی کی خاطر پہن لو، تو آپ نے کہنا ہے کیا ہو گیا تم کو؟ تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا کوئی علم مجھے نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ دیکھیے، یہ یقین ہوتا ہے۔ سب سے بڑی کوالیفیکیشن کیا ہے میری نظر میں کسی کو دین کی طرف بلانے والے کی؟ حق بات پیش کرے۔ حق میں اتنا وزن ہے، حق میں اتنی مضبوطی ہے۔ آپ کو 10,000 لوگوں میں جا کر حق بولنا پڑے، آپ کہتے ہیں میں بولنے کو تیار ہوں، اور اگر باطل ہے نا، 4 لوگ دیکھ کے بندے کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، ہائے میں اتنوں میں جا کر یہ بات کروں، پھر لوگ کیا کہیں گے، پھر تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، پھر لوگ میرے پاس آئیں گے نہیں۔ یہ ہے وہ ہے، حق بات بولیے۔ کوئی سنتا ہے؟ 100 دفعہ سنیں، نہیں سنتا نہ سنیں، اور آپ اس بات کے گواہ ہیں۔ جس کو اللہ نے سنانا ہوتا ہے اللہ اس کو سنوا دیتا ہے۔ یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس چیز کی طرف بلا رہے ہو وہ تو نہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے نہ آخرت میں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے ہی یقیناً اہل دوزخ ہیں۔ بس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے۔ اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا۔ میں جب بھی یہ جملہ پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی بڑا، یعنی ماں باپ، اپنے اس بچے کو جو بات نہیں سن رہا، آگے سیڑھی کرتا ہے، غصہ بھی کرتا ہے، کبھی کبھی گستاخی کرتا ہے، کیا آپ تو سارا وقت بولتی رہتی ہیں، کیا سر کھا لیا آپ نے میرا، آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے؟ تو اس کے بعد آپ آواز جو رندھ جاتی ہے، آپ کی آنکھیں گیلی ہو جاتی ہیں، اور آپ کانپتی بھی زبان سے کہتے ہیں، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پس آگے جا کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے۔ اور رہ گئی بات، جو تم میرے ساتھ برا کرنا چاہتے ہو تو کر لو، کیونکہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ہمارے بڑے ایک بات کہتے تھے، شاید آپ نے بھی محاورہ سنا ہو، کہ بڑے کی بات اور عاملے کا مربع، اس کا احساس بعد میں ہوتا ہے۔ यानी जब माँ बाप नसीहतें करते हैं, उस्ताद कोई बात कहते हैं, जो हमारे ज़िम्मेदारान होते हैं वो कोई बात कहें, तो हमें उस वक्त समझ नहीं आती, बुरा लगता। पता कब लगता है? जब वो नहीं रहते। जैसे एक बेटे की बात मुझे याद आती है, कहते हैं एक वक्त था कि बड़ा शौक़ होता था रात को दोस्तों में जाके बैठे, और पहले बैठ जाना ऐसे ही, कोई गलत बात नहीं लेकिन आदत होती है, बैठ के पान छालिया खाओ, बातें करो इधर की उधर, और जब घर जाने का ख्याल आना तो डर के आना कि अब्बा जी खड़े होंगे दरवाजे पे गुस्से में, फिर जान के देर करना कि अब्बा जी अब सो जाएं तो फिर जाएं, और जूती हाथ में पकड़कर पीछे से फलांग के जाना कि अब्बा जी को पता ना चले कि ये आ गया। एक वो वक्त था, और आज क्या वक्त है कि सारी रात भी घर ना जाओ तो है ही कोई नहीं अब्बा जी, अब तो कोई ये भी नहीं पूछता कि जिंदा हो कि मुर्दा हो। فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ। देखिए एक दिन यह आवाज बंद हो जाएगी, एक दिन हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। बचपन में हमें कितने लोग डांटते भी, समझाते भी, तरबियत भी करते, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं खड़े होते, ऐसे नहीं करना, अब कौन कहते है हमें? जो आते पढ़ गई हैं वो पढ़ गई हैं। तो आज इससे पहले कि ये नेमत हमसे छिन जाए, हमें इस नेमत का फ़ायदा उठाना है। और देखिए उसका अल्लाह के साथ जो गुमान था, अल्लाह ने कितना सच्चा किया। कहते हैं कि लोगों ने उसकी जान लेने की कोशिश की जैसे लोग लेते हैं, लेकिन फ़वक़ाहुल्लाहु सय्यिआति मा मकरू, अल्लाह ताला ने उसे उन तमाम बदियों से महफूज रखा जो उन्होंने सोच रखी थी। भला कैसे महफूज रखा अल्लाह ने? जैसे इब्राहिम को आग से बचा लिया, मूसा को डूबने से बचा लिया, तो कहिए कि अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़ नबदा। अगर आज के इस पारे को पढ़ने के बाद आप अपना सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द ना कर सके, तो मेरे लिए ये मायूसी की बात है कि मैंने आपको इसका हक नहीं दिया। अपने काम आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत आप खुद नहीं कर सकते, आप अपने शौहरों को खुश नहीं रख सकते। मान लीजिए, बस कह दें कि मेरा अल्लाह मेरे मामले सीधे कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला हर मामले को बेहतर तरह से देखता है। और क्या हुआ? और फिरौन वालों पर बुरी तरह का अजाब उलट पड़ा। आँख है जिसके सामने ये हर सुबह शाम लाए जाते हैं, और जिस दिन क़यामत कायम होगी फरमान होगा कि फिरौनियों को सख्त तरीन अजाब में डाल दो, और जबकि दोजख में एक दूसरे से झगड़ेंगे तो कमज़ोर लोग तकब्बुर वालों से जिनके ये ताबे थे कहेंगे हम तो तुम्हारे पैरों थे, तो क्या अब तुम हमसे इस आग का कोई हिस्सा हटा सकते हो? वो बड़े लोग जवाब देंगे हम तो सभी इस आग में हैं, अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान फैसला कर चुका। अब ज़रा यहाँ से रोने वाली आयतें, सारे जहन्नम में इकट्ठे हुए में रो रहे हैं, आओ ज़रा कोई तरीका इख्तियार करते हैं। दुनिया में भी हम ग्रुप्स बनाते थे, प्रेशर ग्रुप, कभी आप देखिए कि मज़दूर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, चलो हुकूमत पे जोर डालते हैं, कभी सारे एम्प्लॉयज़ जमा करके हड़ताल करते हैं, चलो भी अपने इदारे को ज़रा सा समझाएं क्या करना है, ये सोचेंगे कि हम भी ज़रा कुछ कर लें। तो आइए ज़रा सुनिए क्या करने लगे हैं ये लोग। और तमाम जहन्नमी मिलकर जहन्नम के दारोगों से कहेंगे, आप देखिए अमूमन लोगों ने कुछ करना होता है ना तो घर के मुलाजिमों को साथ लगाते हैं, वहाँ के लिए मिसाल तो कोई नहीं है, वो भी फरिश्ते ही हैं, क्योंकि ख़ुद बात करने की जरूरत नहीं है ना, तो जाकर उन सब से क्या कहेंगे कि तुम ही अपने परवरदिगार से दुआ करो कि वो किसी दिन तो हमारे अजाब में कमी कर दे। हाईलाइट कीजिए, وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَتِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ, बस एक दिन अजाब में कमी कर दे, एक दिन जहन्नुम का टेम्परेचर लो कर दे ताकि हम सो सकें, थोड़ी सी तो कमी कर दे। रिवायत में आता है कि अगर जहन्नमियों को जहन्नुम से निकाल कर दुनिया की आग में फेंक दिया जाए तो सुकून से सो जाए, क्योंकि जहन्नुम इस आग से 69 टाइम्स ज़्यादा गर्म है, यह 70वां हिस्सा है उसका। कहेंगे बस एक दिन। कभी आपने हॉस्पिटल्स में ऐसे मरीजों को देखा है कैंसर के मरीज़ आखिरी दिनों के, सारा जिस्म दुखा हुआ है और कहते हैं मुझे इंजेक्शन लगा दो, नर्सों के हाथ जोड़ेंगे, मुझे सुला दो, मुझे सुला दो, मेरे से दर्द नहीं बर्दाश्त, और मैं जाग जाग के थक गई हूँ। आप सोचिए जहन्नुम में मुस्तकिल कंटिन्यूस अजाब है। जवाब सुन लीजिए फरिश्तों का, अल्लाहु अकबर, कालू अवलम तक उतातीकुम रुसुलुकुम बिल बय्यिनात। तीसरा मुकाम है इस बारे में कि यही जुमला लफ्ज़ों के फ़र्क से है, फरिश्ते पूछेंगे क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल मौजज़े लेकर नहीं आए थे। कितनी बड़ी दौलत है ये किताब जो रसूल की सूरत में आती है किसी के पास है। मैं तो खौफजदा हो गई इसको पढ़ के। जितने वेज़ ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ते जा रहे हैं ना, याद रखिए लोगों के ख़िलाफ़ हुज्जतें कायम हो रही हैं। पहले घरों में जाकर फ्लायर देते थे, मस्जिदों में अनाउंस करते थे, ऐसे ही था ना। आप कैसे कैसे फ्लायर आगे जाते हैं और उसको इग्नोर कर देते हो, सेल के साइन को संभाल के रखते हो, लिस्टें ज्वाइन की हुई, एल्बम ज्वाइन किए हुए, कपड़ों के नया डिज़ाइन आए तो हमें भेजना, और दीन की दावत मिले तो कहते छोड़ो अब एक और कोर्स, फिर आ गए, क्या मुसीबत है। वो कहेंगे कोई नहीं आया था तुम्हें बताने वाला, तो जवाब सुन लीजिए, भला क्यों नहीं, बस आए तो थे। बस देखिए दूसरी दफ़ा एक ही लफ्ज़ बोल रहे हैं जहन्नम में ही, यस आए थे, पता था हमें ये काम हो रहा है, वी नो दैट, कब है कहाँ, बस जा ही नहीं सके। देखिए आप जितने लोग यहाँ आते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह इससे कई गुना ज़्यादा लोग आ सकते हैं, आना भी चाहते हैं, अभी तक नहीं आए, पता है आपको ये बात, आना भी चाहते हैं। मैं उनकी बात कर ही नहीं रही जिनको नहीं आना, जो आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ रहे। आप तो पता नहीं किस खुशकिस्मती में यहाँ बैठे हुए इस वक्त, और मैं तो खुद, मैं कहाँ इस काबिल थी कि यहाँ आकर आपको पढ़ाती, ये सिर्फ मेरे मालिक की नेमत है मेरे ऊपर, तो अपनी इस नेमत को कायम रखिए। बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। कल हम ये तो नहीं कह सकेंगे हाँ अल्लाह पता तो था पर जा नहीं सकते थे, वहाँ सिर्फ एक लफ्ज़ बोलेंगे भला कालू फदू, फिर फरिश्ते कहेंगे अच्छा आज जो मर्ज़ी कर लो, क्यों नहीं, वो कहेंगे तुम फिर खुद ही दुआ कर लो, यानी खुद ही अपने लिए दुआ मांगो, मैं कोई नहीं करूँगा तुम्हारे लिए, ये मुराद है। और काफिरों की दुआ महज बेअसर और बेराह है, यानी मांगो या ना मांगो एक बराबर, यानी अब इस जहन्नुम से निकाले नहीं जाओगे। सही बुखारी की रिवायत है 1379, आपने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स मरता है हर सुबह शाम इसकी जगह इसके सामने पेश की जाती है, अगर वो जन्नती है तो जन्नत और अगर वो जहन्नमी है तो जहन्नम, और कहा जाता है तेरी असल जगह ये है जहाँ तुझे अल्लाह क़यामत के दिन भेजेगा। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला हम सब को उस दिन की हसरत से बचा ले। फिर आपने फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया जो शख्स मेरे नबियों से दुश्मनी करे इसने मुझे लड़ाई के लिए तलब किया। बुखारी की रिवायत 6502। आज के दौर में इस पर अमल कैसे होता है, लोग इस दावत को मशकूक बनाते हैं, खुद भी रुकते हैं दूसरों को बहानों से रोकते हैं, नहीं नहीं इधर जाने की क्या ज़रूरत है, इतनी देर इतनी दूर ये वो, इधर आए हम आपको देते हैं कच्चा पक्का, और अपनी बातों में लगा लेते हैं। सीखने की बातों पे आमीन कहते हैं इंशाल्लाह के साथ। आखरत के दिन कोई किसी के लिए दुआ नहीं कर सकेगा, आज अपने लिए दुआएं करनी है। दुनिया की बेसुबाती में नहीं खोना, आखरत की तैयारी करनी है, अमल सालेह करने हैं और इनको फरोख देना है, नेकी की राह दिखाने वालों में से बनना है, दुनिया में रहते हुए अपनी बख्शिश की दुआएं अल्लाह से मांगनी हैं। चलिए आगे देखिए आयत नंबर 50 से 60, अल्लाह के वादे हक हैं, अल्लाह अपने वादों के ख़िलाफ़ कभी नहीं करता, क्योंकि इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीन आमनु फिल हयाति दुनिया व यौम यकूमुल अशहाद। यकीनन हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की मदद दुनिया की ज़िंदगी में भी करेंगे, अल्लाह हमारी भी कर दे, इस रास्ते की सारी रुकावटों और उलझनों को दूर कर दे, और उस दिन भी जब गवाही देने वाले खड़े होंगे, अल्लाह क़यामत के दिन हमारे लिए हक की गवाहियां देने वाले भेज देना, हमारे ख़िलाफ़ गवाहियां देने वाले ना आ जाएं, जिस दिन ज़ालिमों को इनके उज़र और माजरत कुछ नफा न देगी, ان کے لیے لعنتی ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی رسوائیوں سے بچا لے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ عطا فرمایا اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا کہ وہ ہدایت اور نصیحت عقل مندوں کے لیے تھی. پس اے نبی آپ صبر کیجئے کہ اللہ کا وعدہ بے شک کو شبہ سچا ہی ہے, اور آپ اپنی لغزشوں کی معافی مانگتے رہیں اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں. جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں, ان کے دلوں میں سوائے نری بڑائی کے اور کچھ بھی نہیں, خود کو بڑا سمجھتے ہیں, وہ اس تک پہنچنے والے ہی نہیں. پس تو اللہ کی پناہ مانگتا رہے, بے شک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے. آسمان و زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے, لیکن یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ بے علم ہیں, اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں. نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے اچھے کام کیے بدکاروں کے برابر ہیں. تم بہت کم نصیحت حاصل کر رہے ہو. قیامت بال یقین اور بلا شبہ آنے والی ہے, لیکن یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے. اور تمہارے رب کا یہ فرمان ہے کیا کہ مجھ سے مانگو, مجھ سے دعائیں کرو, میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اے اللہ ہمیں بھی تجھ سے مانگنے والا بنا دے. یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے. کیا سیکھا؟ عمل صالح اختیار کرنے ہیں تاکہ آخرت میں پچھتانا نہ پڑے. قرآن سے ہدایت بھی لینی ہے, نصیحت بھی لینی ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے, صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے, حقیقت سے نظریں نہیں چرانی, دکھاوے کی عبادت سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچا دے. چلیے آیت 61 سے 68, ٹاپک ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, میں اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں. ذرا سا سر جھکا کر اللہ سے کہیے کہ اللہ تو جو کہے گا وہ کروں گی. یہی ہے اس قرآن کو پڑھنے کے بعد نجات کا نسخہ. پڑھنا تو بڑی بات نہیں ہے, اصل یہ کہ سر جھک جائے. اس میں آپ دیکھیں گے اللہ کی خوبیاں. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات بنا دی کہ تم اس میں آرام کرو, اور دن کو دیکھنے والا بنا دیا. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے, لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے. سچ ہے نا, اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے. یہی ہے اللہ, تم سب کا رب, ہر چیز کا خالق, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر کہاں تم پھیرے جاتے ہو؟ اس طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے رہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنا دیا, اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں. کس کس کو اپنی صورت اچھی لگتی ہے, اور کس کس کو دوسروں کی صورتیں اچھی لگتی ہیں؟ دونوں کی اچھی ہیں. آج کے بعد کبھی کسی کی صورت کو برا نہ کہیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس احساس کمتری سے نکال دے, اور صورت تو چھوڑ دیجئے, سیرت اچھی ہو جائے. میں کہتی ہوں کہ نین نقش جیسے بھی ہوں, چہرے پہ مسکراہٹ سجا لیں, دل میں اللہ کا تقویٰ ہو, آنکھوں میں حیا ہو, چہرے پہ علم کا نور ہو, اس سے خوبصورت شکل کوئی نہیں ہوتی. اللہ ہمیں ان سب سے متصف کر دے. اور تمہیں عمدہ عمدہ کھانے کی چیزیں عطا فرمائیں, یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے. پس بہت برکتوں والا اللہ ہے, سارے جہان کی پرورش کرنے والا. وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, پس تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو. تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو, اس بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہیں. مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں تمام جہانوں کے رب کا تابع فرمان ہو جاؤں. وہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے, پھر نطفے سے, پھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا, پھر وہ تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے, پھر بڑھاتا ہے, ताकि तुम अपनी पूरी कुव्वत को पहुंच जाओ, फिर बूढ़े हो जाओ। ये है लाइफ स्पैन। तुम में से बाज़ इससे पहले ही फौत हो जाते हैं, यानी हमें नहीं पता कि हम बूढ़े होंगे भी कि नहीं। वो तुम्हें छोड़ देता है ताकि तुम मुद्दत मुअय्यन तक पहुंच जाओ, यानी मौत, और ताकि तुम सोच समझ लो। वही है जो ज़िंदा करता है और मार डालता है। फिर वो जब किसी काम का करना मुकर्रर करता है तो क्या कहता है, फ़इन्नमा यकूलु लहू कुन फ़यकून। तो इसे सिर्फ इतना कहता है कि हो जा, बस वो हो जाता है। आप नोट करें कि आजकल एक दफ़ा ये ज़िक्र आ रहा है, कुन फ़यकून होना, क्योंकि कुरान पढ़ने के बाद इंसान अल्लाह की इस खूबी को मान जाता है। ये देखिए लाइफ स्पैन जो भी हमने पढ़ा है, आप और मैं ज़रा सा अपने आप को सोचिए। तब हमें तो पता नहीं था ना, जब हम इस स्टेज से गुज़र रहे थे, यानी एक ह्यूमन एम्ब्रियो जो कंसेप्शन के बाद फर्टिलाइजेशन की स्टेजेस से गुज़रता है, आप देखिए कि सबसे पहले एक वीक होता है तो ये है, शुरू में एक छोटा सा रेड डॉट है, ये है शुरू में जब कंसीव किया माँ ने। एक वीक के बाद आप इतने बन गए ये रेड डॉट। फिर आप देखिए जब आप दो वीक की हुई ना तो आप ऐसी हो गई, एक अंदर डॉट है और उसके इर्द गिर्द एक दायरा है। फिर आप दो वीक्स के बाद जब उससे आगे तीन वीक की हुई ना तो ये देखिए ये एम्ब्रियो की शक्ल फिर उस वक्त बनी, ये छोटा सा एग लग रहा है और इसमें एक रेड सी चीज़ है। जब आप चार वीक की हुई तो आप ऐसी बन चुकी थी कि आप अपनी माँ से कनेक्ट कर दी गई एम्बिरिकल कॉर्ड के ज़रिए। पाँच वीक में ये देखिए आपकी गर्दन झुकती गई और आप ज़रा सी फॉर्म में आती गई। पाँच वीक एम्ब्रियो की सूरत में आप ऐसी थी, छः वीक में आप ऐसी बन गई, सात में आप ऐसी थी, आठ वीक में ऐसी थी, ये देखिए नौ वीक का एम्ब्रियो पूरा बच्चा नहीं है। फिर लोग कहते हैं अच्छा जी अबॉर्शन करा दें तो वो तो अभी ज़िंदा भी नहीं था। और बारह वीक का फीटस एक पूरा बच्चा होता है। बारह वीक कितने महीने हुए, तीन माह में बच्चा माँ के पेट में इस शक्ल में होता है। और जो फिर अबॉर्ट करवाती हैं या करती हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ कर दे। क्या सीखा, अल्लाह की नाफरमानी से बचना है, बोलिए, अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना है, गैर अल्लाह को नहीं पुकारना, इंसानी तख्लीक पे गौर व फिक्र करना है, ज़िंदगी और मौत का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास समझना है, रात को नेमत समझते हुए उसमें से सुकून हासिल करना है। चलिए आगे लिखिए, आयत 69 से 78 टॉपिक है, गुमराही में मगन रहने और इतराने का इंजाम। बाज़ लोग कहते हैं ना सुनो, मत जाओ मस्जिदों में, मत जाओ कुरान सीखने या सिखाने वालों के पास, ऐसे ही डराते रहते हैं, क्या करो मौज मस्ती करो। अल्लाह कहते हैं कब तक, अलम तर इलल लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाह अन्ना युसरफून, क्या तूने इनको नहीं देखा जो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, वो कहाँ फेर दिए जाते हैं। जिन लोगों ने किताब को झुटलाया और इसे भी जो हमने अपने रसूलों के साथ भेजा, बस इन्हें अभी अभी हकीकत हाल मालूम हो जाएगी, जबकि इनकी गर्दनों में तौक होंगे। कैदी दुनिया में खुले फिरते थे ना, वहाँ अल्लाह संगलियाँ डाल देगा इनके गलों में, और जंजीरें होंगी और घसीटे जाएंगे खौलते हुए पानी में, जैसे जानवर के गले में रस्सी डाल के उसको किसी खुरली या किसी ऐसी जगह में जहाँ उसके लिए पानी रखा उधर ले जाया जाए। दुनिया में आज़ादी है ना, तो वहाँ की कैद है फिर। और फिर जहन्नम की आग में जलाए जाएंगे। फिर इनसे पूछा जाएगा जिन्हें तुम शरीक करते थे वो कहाँ हैं, आज वो करनी वाले किधर हैं, वो क्यों नहीं दिख रहे। जो अल्लाह के सिवा थे वो कहेंगे वो तो हमसे बहक गए, यानी आज भाग गए हमें छोड़कर, बल्कि हम तो इससे पहले किसी को पुकारते ही ना थे। देखिए पहले सच बोलेंगे, फिर एकदम लगेगा रे इसका अंदर ये कि हम पूछते थे, तो कहेंगे नहीं नहीं हमने तो नहीं किसी को पुकारा। इससे आपको उनकी घबराहट नज़र आ रही है। अल्लाह ताला काफिरों को इसी तरह गुमराह करता है। ये बदला है इस चीज़ का जो तुम ज़मीन में नाहक फूले न समाते थे और बेजा इतराते फिरते थे। अब आओ जहन्नुम में हमेशा रहने के लिए, इसके दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, क्या ही बुरी जगह है तकब्बुर करने वालों की। बस आप सब्र करें, अल्लाह का वादा कतन सच्चा है, इन्हें हमने जो वादे दे रखे हैं इनमें से कुछ हम आपको दिखाएं, या इससे पहले हम आपको वफात दे दें, इनका लौटाया जाना तो हमारी ही तरफ है। यकीनन हम आपसे पहले भी बहुत से रसूल भेज चुके, जिनमें से बाज़ के वाक़यात हमने आपको बयान किए और इनमें से बाज़ के किस्सों को तो हमने बयान ही नहीं किया। और यानी किसी रसूल की ये ताकत न थी कि कोई मौजज़ा अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर ला सके। फिर जिस वक्त अल्लाह का हुक्म आ जाए तो हक़ के साथ फ़ैसला कर दिया जाए और इस जगह अहले बातिल खसारे में रह जाएँ। क्या पता चला? अल्लाह के वादे सच्चे हैं। और याद रखिए कि अल्लाह के ये वादे नबी और सहाबे नबी के साथ पहले भी पूरे हुए, मसलन बदर के दिन कुफार का धड़ और सर तोड़ दिया गया, कुरैश के बड़े बड़े सरदार मारे गए, बिलाखिर मक्का फतह हुआ और आप दुनिया से रुखसत ना हुए जब तक कि तमाम जज़ीरातुल अरब आपके ज़ेरे नगीन ना हो गया। क्या सीखा? किताब और पैगंबरों को नहीं झुटलाना, जहन्नुम के अजाब से पनाह मांगनी है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, दावत देते हुए मुश्किलात से नहीं घबराना, इस बात का यकीन रखना है कि अल्लाह का वादा बरहक है और इस आर्जी दुनिया में नेक काम करने हैं। चलिए आखिरी रुकू 79 से 85, टॉपिक लिखिएगा रब के एहसानात की कदर करो वरना आखरत का ईमान कोई फ़ायदा ना देगा। अल्लाहुल्लज़ी जाललकुमुलअनाम लितरकबू मिन्हा व मिन्हा ताकुलून। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए चौपाए पैदा किए जिनमें से बास पर तुम सवार होते हो और बास को तुम खाते हो। किस पे सवार होते हैं? घोड़ा, ऊँट। खाते क्या हैं? बकरी का गोश्त, गाय, मुर्गी। और भी तुम्हारे लिए इनमें बहुत से नफ़े हैं ताकि अपने सीनों में छुपी हुई हाजतों को इन्हीं पर सवारी करके तुम हासिल करो। कैसे सवारी पे बैठते हैं और अपने अपने काम करके आ जाते हैं, ये अल्लाह की नेमत है। और इन चौपायों पर और कश्तियों पर सवार किए जाते हो, अल्लाह तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता जा रहा है। बस तुम अल्लाह की किन किन निशानियों के मुनकर बनते हो? क्या उन्होंने ज़मीन में चल फिर कर अपने से पहलों का अंजाम नहीं देखा? जो इनसे तादाद में ज़्यादा थे, कुव्वत में सख्त और ज़मीन में बहुत सी यादगारें छोड़ी थीं, इनके किए कामों ने इन्हें कुछ भी फ़ायदा न दिया। बस जब कभी इनके पास इनके रसूल खुली निशानियां लेकर आए तो ये अपने पास के इल्म पर इतराने लगे। आज भी इंसानियत अपने दुनियावी इल्म पर इतराती है। कोई हमसा हो तो सामने आए और दीन का लफ्ज़ शायद अलिफ़ लिल्ला ना आता हो। अल्लाह इस जहालत को दूर कर दे। बिलाखिर जिस चीज़ को मजाक में उड़ा रहे थे वही इन पर उलट पड़ी। बस हमारा अज़ाब देखते ही कहने लगे। अब ज़रा से इस आखिरी आयतों पर गौर कीजिएगा। क्या कहने लगे? कि अल्लाह वाहिद पर हम ईमान लाए और जिन जिन को हम शरीक बना रहे थे हमने इन सब का इनकार किया, लेकिन हमारे अजाब को देख लेने के बाद इनके ईमान ने इन्हें कोई नफ़ा ना दिया। अल्लाह ने अपना मामूल यही मुकर्रर कर रखा है जो इसके बंदों में बराबर चला आ रहा है और इस जगह काफिर ख़राब और खस्ता हुए। अब क्या फ़ायदा? ये देखिए आयत 80 में जो एहसानात थे उसमें से चंद, नंबर एक कश्तियों पर सवारी, चौपाए, और उन्हीं से हम मुनाफा भी लेते हैं, रिस्क भी है और सवारी भी है हमारे लिए। क्या सीखा? दौलत और दुनिया की ऐश के नशे में नहीं खोना, अल्लाह की निशानियों पे गौर व फिक्र करना है। हमारी एक बहुत ही प्यारी अजीज़ सिस्टर है, एडमिन भी है, दिल के करीब है, वो हर बात करती है ना इंशाल्लाह जी। एक दफ़ा उन्होंने मुझे 2 से 3 मिनट का मैसेज छोड़ा, कोई काम थे ऐसी बता रही थी ये करना है वो। मैंने उसको सुना, मुझे वैसे ही घबराहट होती है कि बात जल्दी से काम किया है। उस 2 से 3 मिनट में उन्होंने 17 बार इंशाल्लाह बोला। मैंने उनको फौरन मैसेज किया, आइंदा आप इंशाल्लाह के बग़ैर करेंगी तो आपका मैसेज 1 से 1.5 मिनट का होगा। तो इंशाल्लाह दिल से कहो अल्लाह के बंदो, मेरे कहने पे नहीं कहना। चलिए अल्लाह की निशानियों पे गौर व फिक्र करना, अल्लाह की नेमतों पे शुक्र करना, दीन वालों का मजाक नहीं उड़ाना, वक्त पर काम करना है ताकि बाद में पछताना ना पड़े, پچھلی قوموں جیسے طرز عمل سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی میری مدد فرمائے.